الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه وبارك وسلم. اب تقریر کا وقت نہیں رہا, صرف تھوڑی سی تفہیم کر دیں. عربی کا ایک لفظ ہے درس اور تدریس, اسی سے بنا ہے مدرسہ. مدرسہ جہاں پر درس دیا جاتا ہے اور تدریس کا کام کیا جاتا ہے. یہ کو اس میں زیادہ لگا دے گا, میں نعت خوان نہیں ہوں گا. درس اور تدریس اور مدرسہ, اللہ تعالی نے کھیتوں میں اناج پیدا کیا, گیہوں, دھان, چنے, مٹر, یہ جتنے اناج ہیں اس نے کھیتوں میں پیدا کیا ہے. کس کے لیے؟ اب بتائیے, یہ کھیت میں اللہ نے بڑا قیمتی اناج پیدا کیا, غلہ پیدا کیا. کیا آپ جا کر کے کھیت میں جب گیہوں پیدا ہو جاتا ہے تو منہ مار کر کے ایسے کھاتے ہیں جانور کے ساتھ؟ اور اگر ایسا کریں تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو پکڑو مینٹل ہاسپٹل دے دیں. ہے آپ کے لیے, لیکن اناج کا استعمال کھیت میں جا کر جانور کی طرح چرنا, یہ آپ کا ہمارا کام نہیں ہے, سمجھے؟ چلیے, وہاں سے کھیت کاٹ کے لائے, کھلیان میں رکھا, تب بھی آپ اس کا استعمال نہیں کرتے. اس کے لیے پرانے زمانے میں زمین پر وہ اناج کے ڈنٹھل پھیلا دیے جاتے تھے اور چار پانچ بیلوں کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے اوپر گھمایا جاتا تھا. اب آپ کے اس آندرا تیلگو زبان میں کیا اس کو کہتے ہیں یہ معلوم؟ وہ تو کھلا, جہاں پر غلہ رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کھلا. ہماری پوروی زبان میں اس کو دموری کہتے ہیں, کہ اس پر بیل دوڑتا ہے, چلتا ہے, تو وہ جس کے اندر اناج کے بھٹے لگے رہتے ہیں وہ سب ٹوٹ پھوٹ کر کے بھوسا الگ ہو جاتا ہے اور اناج الگ ہو جاتا ہے. پھر اس اناج کو ہوا دے کر کے ایک طرف اور بھوسے کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے, سمجھئے؟ پھر بھی آپ اس کو کچا چباتے ہیں, پھر اس کے لیے چکی کی ضرورت پڑتی ہے جہاں لے جا کر کے آپ اس کو پسواتے ہیں, اور آٹا بنتا ہے, پھر بھی آپ آٹا شکر کی طرح پھانکتے نہیں. اس کے لیے بھی آگ اور توے کی ضرورت پڑتی ہے, پھر روٹی بن جاتی ہے. روٹی بننے کے بعد پھر اس کو سالن میں آپ ڈالتے ہیں, پھر منہ میں دانت شریف کے پاس حوالے کر دیتے ہیں. یہ 32 سپاہی اسے چبا چبا کر حلوے جیسا نرم بناتے ہیں, پھر آپ کے پیٹ میں جاتا ہے, تب یہ حضرت شکم جو ہیں اس کو ہضم کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں, سمجھ گئے؟ اگر آپ بھوسا سمیت اناج کھا جائیں, یہ پیٹ اللہ نے ہضم کرنے کے لیے بنایا ہے, لیکن یہ بیمار پڑ جائے گا, پیٹ پھول جائے گا, اور آپ کی جو एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी, वो अनाज उसमें हाई प्रोटीन भी है, विटामिन बी भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन बी कम्प्लेक्स भी है, सारी चीजें उसके अंदर हैं, लेकिन आपने बेढंगे तौर से खाया तो वो विटामिन और प्रोटीन आपके बदन में तहलील नहीं होंगे बल्कि गैस पैदा कर देंगे और अल्सर हो जाएगा, एसिडिटी होगी, रात भर बुखार आएगी, सीने में जलन होगी, पेंटाकोर्जाल जैसी एसिडिटी की दवाएं आपको लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाके थोड़ा सुकून होगा, दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाएंगे, बेढंगे तरीके से कीमती अल्लाह का पैदा किया हुआ अनाज आपको नुकसान देगा और धन से तरीके से अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो माशा अल्लाह जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छाती टूट जाएगी, दिमाग काम करेगा, पेट हजम करने में कामयाबी हासिल करेगा, आंख को भी रोशनी मिलेगी, कान की समाहत भी बरकरार रहेगी, हाथ पांव दौड़ेंगे भागेंगे, समझ गए। अनाज कीमती है लेकिन उसको खल्ले में लाकर भूसे को अलग और अनाज को अलग करना, चक्की में पीसना, खाने के लायक बनाना, इसी को अरबी में कहते हैं दर्स, समझे। दर्स और तदरीस के माने दाहना, गल्ले को भूसे से अलग करके खाने के काबिल बनाने का नाम है दर्स। अब समझ गए आप, ये मदरसा जो है दस का खल्ला है, यहां पर कुचला जाता है, अनाज को तकलीफ दी जाती है तब जाके वो अलग होता है, फिर दर्शक माने पीसने के भी आते हैं, फिर शक्ति में पीसा जाता है यहाँ, तब जाकर के तुम्हारे बदन की विटामिन और प्रोटीन देने के लायक बनता है। अब तो अच्छी तरह समझ गए, इसलिए बुजुर्गों ने इसका नाम खल्ला रखा है, मदरसा रखा है, यहाँ भूसा अलग अनाज अलग किया जाता है और हल्लो हल्लो ए अनाज अलग हो जा, ए अनाज अलग हो जाओ, अलग हो जा, ऐसे अलग नहीं होता। आज के जमाने में तो डंडे से पीटते हैं, अलग हो जा अलग हो जा, तब अनाज अलग होता है, भूसा अलग होता है। और आज और डेवलपमेंट हो गया, मशीन बनाई है, डाल दिया, खट खट कर भूसा अलग, अनाज अलग होता है जी, बगैर तकलीफ के अनाज और भूसे अलग नहीं होते, खाने के लायक नहीं होते हैं। अल्लाह ने अनाज यकीनन आपकी ताकत तवानाई आपकी सेहत के लिए बनाया है, लेकिन उसके लिए तरीका चाहिए, धन चाहिए, सलीका चाहिए, तब अनाज आपके लिए आपकी जिंदगी के लिए मुफीद साबित होगा। यह है मेरी पूरी तकरीर। ये बच्चे जो अल्लाह ने आपको दिए बड़े कीमती दिए हैं, लेकिन इन्हें भूसा पड़ा हुआ है, बड़े कचरे में ये निकल है अभी, कभी मोहल्ले के बुरे लड़कों की सोहबत में रहे, कभी गालियां देते रहे, कभी कुछ भी करते रहे, इन लड़कों से फायदा हासिल करना है, बड़े कीमती हैं, अनाज से भी कीमती हैं, हीरे जवाहर से भी कीमती है, सोने चांदी से भी कीमती है, लेकिन इन बच्चों को खल्ले में भेजो, पहले मदरसे में भेजो, वहां पर तर्जुमाने अहले सुन्नत मौलाना खाजा जाफरुल आबदीन साहब डंडे से मार मार करके भूसा अलग कर, शिकायत मत करना मेरे बच्चे को क्यों मारा, अगर शिकायत करते हो तो तुम अनाज को भूसा अलग करने के लिए आटा बनाने के लिए चक्के में क्यों लगती जाते, चक्की में कौन से डालते हैं बेचारा, जुबान अगर होती तो चिल्लाता मत पीसो मैं मर जाऊंगा खत्म हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने बेजबान बनाया है इसलिए ताकि कितनी भी तकलीफ वो बोले नहीं, और जब बोलेगा नहीं तो उसको सारी तकलीफ से आप गुजार करके इंसानी जिंदगी के लिए कारामद और मुफीद बना दे। और जो बोलता है मारो नहीं मारो वही आवारा बनता है। ये खल्ले में जाएंगे मदरसे में जाएंगे, इनको गाहा जाएगा भूसा अलग किया जाएगा और इनकी तमाम क्रिमिनल आदत को दूर करके उन्हें एक पाकीज़ा उम्मत रसूल का मॉडल बनाया जाएगा। अब ये हमारी कौम और मिल्लत के लिए कारामद और मुफीद साबित होंगे। आज इतने दिन से इनका भूसा अलग कर दिया गया, क्या मालूम सब भूसा अलग हो गया, आज चमक रहे हैं गेहूं का दाना नजर आ रहा है, लेकिन अब जो मैं समझे हमको यही रहना है, अब गेहूं चमक रहा है चावल चमक रहा है, अब तुमको पकना भी है, तुम्हें इसके रसूल की आग पर पकाया जाएगा तपाया जाएगा। ये कौम आपको इनाम नहीं देगी, तपाएगी, तपते चले जाना और जब तप तप करके तुम राख बन जाओगे उस वक्त आला हजरत का ये शेर गुनगुनाना। कौन सा शेर? आला हजरत, अरे नहीं भाई, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अभी तो ये बेचारे अनाज हैं अलग हुए हैं, अभी तो और मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है, आलिम बनने के लिए रहनुमा बनने के लिए आसानी नहीं है, पगड़ी बांध कर रहनुमा नहीं बनता है, तब तपा करके रहनुमा बनता है, तजर्बे की आग में जल जल करके वो रहनुमा बनता है, तब जाकर के कब्र में आराम से सोता है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। और दोस्तों ये दौलत हर जगह नहीं मिलती, ये दौलत हर जगह नहीं मिलेगी, अनाज की दुकान में अनाज वहां सोना नहीं मिलेगा, मिलेगा सोने की दुकान में जूता लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा, जिसकी जो दुकान है वो फिक्स है, किराने की दुकान किराना मिलेगा, अनाज की दुकान अनाज मिलेगा, लोहे की दुकान में लोहा मिलेगा, जूते की दुकान में जूते चप्पल मिलेंगे, और सारी दुनिया की चीजें लेने के लिए इकट्ठा कहीं कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ एक ही दुकान है, वो दुकान ही मुस्तफा, जिसमें अल्लाह की जितनी नेमतें तकसीम होती हैं सब अल्लाह ने मुस्तफा की दुकान में सजा दिया, और खुद मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना अनाकाशिमुन वल्लाहु युती बांटता तो मैं ही हूँ, इन्नमा हस्र के लिए आता है, फरमाते हैं सरकार मैं ही बांटता हूँ और कोई नहीं। आला हजरत ने इसी से फायदा उठाया है, कौन देता है? अरे सिर्फ बांटने वाले मुस्तफा है, जो बांटता है वही देता है।
सुभान अल्लाह,
हस्र के साथ रसूल ने फरमाया इन्नमा अना कासिम, बांटता तो मैं ही हूँ कोई नहीं बांटता, और अगर कुछ कोई देता है तो चंद चीजें देगा, सब नहीं देगा, मेरी बारगाह वो है कि इन्नमा अना कासिम वल्लाह योगी, बांटता तो मैं हूँ देता अल्लाह, इसीलिए जगह फरमाते हैं नेमतें बांटता, जिस संत वो सी समझे रिस्क बांट रहा है वो बांटने वाला, सोना चांदी बांट रहा है वो बांटने वाला, सब दुनिया को अल्लाह की नेमत बांट रहा है, लाव रब्बिल अर्श हक, जिसको मिला जिसको जो मिला उनसे मिला, भक्ति है तो नैन में नेमत रसूल मिला। कौन देता है जी? देने को मुंह चाहिए। आपने फरमाया कि बुद्धा उसकी तशरीह करेगा, मेरे पास न इल्म है न फजल है न सूझ है न समझ। ये नौजवानों का इल्म, हमारा इल्म तो 81 साल का होता है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा, हमारे बशीर साहब उनके बुजुर्गों ने कहा कि ओल्ड इज गोल्ड। तो शायद हो सकता है हम ओल्ड होने में गोल्ड की बात कर रहे हैं। मैं ये कर रहा कह रहा था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मौलाना ने फरमाया हाथ देता है मुंह नहीं देता, लेकिन आला हजरत ने फरमाया कि मुंह चाहिए देने को। समझे आप? एक तो ये मुहावरा है, वो तो बात में समझाऊंगा। देता हाथ है और देने के असरात मुंह से जाए। 10 रुपया दे रहा है, पता चल गया देने का मिजाज नहीं था, बखील। समझो, देता हाथ है बताता मुंह है। और अगर उसने 1,00,000 रुपया दिया, हाँ मुस्कुरा रहा है, बेटा और चाहिए तो लेके जा रहा है, मुंह पे खुशी है, मुंह पर बशाशत है, लबों पर मुस्कुराहट है, ये देने का सही अंदाज है। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है? जिस तरह रसूल देते हैं वैसे कौन देता है? अरे कौन देता है सवाल कर रहे हैं। ढूंढो इस दुनिया में है कोई देने वाला? अरे उनके देने का अंदाज निराला देखा। भीख देते हैं और ममता को दुआ देते, हर देने वाला भिखारी से दुआ सुनने का मुतमन्नी होता है। तेरे बाल बच्चे जुग जुग जी हैं, तेरा कारोबार फूल पड़े, अल्लाह तुझे मक्का मदीना दिखाए, अल्लाह तेरी हर परेशानी दूर करे। भिखारी 10 दुआ देता है तो मुश्किल से फटा 5 का नोट निकलता, 5 का नोट वो भी फटा चल दे चल। ये नहीं कहेंगे थोड़ा और खड़ा रहे मैं रूह अफ़ज़ा पिलाऊंगा, ऐसा कोई कहता, लेकिन मुस्तफा का दरबार ये है कि वलो अगर कोई गुनाहों की बख्शिश चाहता है, गलत काम कर लिया होता है इंसानी तकाजे से, और फिर अगर वो अपने को बख्शवाना चाहता है या मान ला सकता, लेकिन इधर उधर मत जाना मुस्तफा की बारगाह में आके अल्लाह से माफी मांग, मांगना है अल्लाह से और अल्लाह पर मांगता, इधर उधर मत मांगना, अब्बा के पास मत जाना, अम्मा के पास मत जाना, हजरत जी के पास मत जाना। अगर अपने को बख्शवाना है तो जा जिसको देने का मुंह मैंने दिया, जा उनका है हबीब। ऐसे उम्मती को चाहिए कि वो आपके पास चला आए, मेरे रसूल जिंदा है, अगर वहां नहीं पहुंच सकते हो तो इन्हीं से सलाम कर दो और मोहब्बत से सलाम करना। फरमाते हैं अस्मा सलाम अहले मोहब्बत, मैं मोहब्बत से सलाम करने वाले को कहीं भी सलाम करता है सुनता हूँ, और जब सलाम आप करोगे तो वो सुनेंगे। सुनने का मतलब क्या है? सलाम करने का मतलब ये है कि आप उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करें। मैं इधर जा रहा हूँ, मौलाना जाफरुल आबिदीन ने देखा कि हजरत को मैं अपनी तरफ मुतवज्जा करूँ तो ये नहीं बोलते हैं मौलाना इधर से, ऐसे बोलते हैं, कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, मैं मुड़ करके फौरन जा रहा हूँ इधर, डायरेक्शन तब्दील हो जाएगा कौन सलाम कर रहा है, और सलाम करने वाले से मोहब्बत होती है, फिर सलाम के बाद जो कलाम होता है वो प्यार से सुनता है। मुस्तफा फरमाते हैं पहले मोहब्बत का करंट और कनेक्शन लेकर जहाँ भी हो वहीं से सलाम करो, असना सलाम अहले मोहब्बत, मोहब्बत करने वालों का सलाम मैं डायरेक्ट सुनता हूँ। और जब रसूल सुनेंगे तो तवज्जो भी फरमाएंगे, और जैसे ही सलाम कर लो वैसे ही कहते या रसूल अल्लाह मेरे लिए सिफारिश करवा दीजिए, मुझसे ये गलती हो गई, मुस्तफा सिफारिश करेंगे। लगे अल्लाह तौबा रहीमा, तो अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला भी पाएंगे। तौबा कबूल करने वाला तो हो गया, रिहाई हो गई, लेकिन अल्लाह फरमाता मुस्तफा के जरिए अगर तुमने तौबा की है तो तौबा भी कबूल होगी। लवजबिल्लाह तव्वाबर रहीमा, और इस तरह लाभ यह होगा कि अलग से अल्लाह की रहमतें भी मिलेंगी, माफ हो गया जुर्म, लेकिन जुर्म माफ होकर अल्लाह ताला फरमाएगा दामन दिल फैला दे और मेरी रहमत की सौगात लेकर दे। ये है मुस्तफा के दरबार से मिलने का आलम। बातनी जाहिरी रिज़्क इज्जत दौलत ये सब लाव रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, और बत्ती है तो इनमें नेमत रसूलुल्लाह की, और इस तरह देते हैं, इस तरह देते हैं कि मुस्कुरा मुस्कुरा कर देते हैं, और देर नहीं लगाते हैं कि फकीर चिल्लाता रहे काम हो रहा है। आखिर में जब बहुत देर हो गई, सुनते सुनते कान पक गया, तो शेख साहब ने कहा ले उसको 10 रुपया दे दे। ऐसा नहीं, आला हजरत फरमाते मुस्तफा का दरबार तो ये है कि ममता का हाथ उठते ही दाता की देन। ममता यूं हाथ उठाता है, बस इसी में देर लगती है। नबी के देने में देर नहीं, वो तो अल्लाह की नेमत लेके यूं खड़े रहते, हर वक्त ममता का हाथ उठते ही दाता की देन है। दूरी दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर के, हालांकि चाहिए कि दो हाथ की है, एक तरफ से मुस्तफा का हाथ एक तरफ से ममता का हाथ, तो दो हाथ की दूरी हो गई, लेकिन हुजूर के हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं, वो तो लिए ममता का इंतजार करते रहे। हाथ बढ़ाओ मिल गया, हाथ बढ़ाओ मिल गया, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। ये वो दरबार है जो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाले तो बहुत है लेकिन मुंह बिगाड़ से देते हैं। ये देने वाले वो हैं कायनात को नेमत बांटते हैं, ये पूरा मुस्कुरा करके बांटते हैं। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये सच्चा देने वाला क्यों टैग लगाई, मुंह पर अगर मसर्रत है वो देने वाला सच्चा। इसलिए पहले मिसरे को देने वाला मुंह बिगाड़ कर नहीं देता और एक मुस्कुरा कर देता है, दोनों दे रहे हैं, लेकिन सच्चा कौन है जो हंसते हुए दे रहा है। उसकी वजाहत कर दिए, कंफ्यूज नहीं होना। देने वाला कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये है, अभी इसकी तशरीह और भी है लेकिन वक्त नहीं है। मैंने शेर के मफहूम तक आप हजरात के जहन को पहुंचा दिया है। अब आप पहुंचने के बाद अहले इल्म भी हैं, वो उसको ज्यादा से ज्यादा समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मौलाना जाफरुल आबदीन साहब को मुस्कुरा मुस्कुरा कर रसूल के सदके में इल्म देने का अंदाज रखते आते, और हमारे शेख अलहाज बशीर साहब को मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपना सरमाया देने का हक अदा करने का अंदाज सिखा दिया। आज देख करके बिल्डिंग बहुत खुशी हुई कि ग्राउंड फ्लोर के बाद फिर एक फिर दो, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद छत है। अब वो छत भी इंतजार कर रही है कि मेरे सर पर पगड़ी कब मानी जाए। इंशाअल्लाह उसकी भी दस्तारबंदी हो जाएगी, एक छत और पड़ जाएगी और अच्छे कमरे बन जाएंगे मेहमान आने रसूल। इस पुरफजा जगह में, साफ सुथरे माहौल में, अल्लाह के रसूल का कौल और अल्लाह की किताब की आयतें याद करेंगे, पूरे वरंगल वालों को एक ऐसा एंगल मिलेगा। इसका नाम क्या है? ये वार एंगल है, लड़ाई का एक एक एंगल है। जब बदमजहब और वहाबियत आएगी तो ये हर एंगल पर खड़े रहेंगे। ये फौज जो है, फौज के मैदान में एंगल संभाला जाता है। सब इधर उधर बिखरे नहीं होते हैं, मैमना है, मैसरा है, कलबी लश्कर है। हर एक एंगल वहाँ का ब्रिगेडियर पहले मुतय्यन करता है, ये हमारा वरंगल वार एंगल बन जाएगा। हर हर पहलू पर ये मुजाहिदीन नजर आएंगे। जहाँ वहाबियत का मच्छर आया और जमात आई गुनगुन गुनगुन पढ़ो कलमा लो, ये मच्छर जो होता है ये खामोश इसकी जमात नहीं निकलती है। पहले तो छोटे होते थे, अब तो माशाअल्लाह बहुत तंदुरुस्त है। इसलिए कि फॉरेन का माल खाता है, इसलिए बड़ी टान वाला, बड़े पाइके वाला। और आजकल काले मच्छर बड़े खतरनाक निकले, इनके लिए डीडीटी का स्प्रे चाहिए, गुड नाइट चाहिए, हर कछुआ अगरबत्ती चाहिए, तब ये भागेंगे। लेकिन भागेंगे इस तरह से नहीं, भाग के फिर आएंगे। यहाँ स्मेल खत्म हुई, फिर आए सलाम वालेकुम, यहाँ बोसा, यहाँ बोसा, यहाँ रात भर पड़ेगा। इनके हम गए थे अल्लाह की तरफ। मौलाना कितने बड़े बड़े मच्छर, रात की बात कर रहा। अरे यहाँ बैठे में मारो तो तेरे हाथ में खून है, कना पी लेते थे। थोड़ी देर में जितना लिबर्टी वाला सिरन से नहीं निकालता, सिकर करने वो सब निकालते थे। ऐसा मालूम सब ले जाकर के दिल्ली में हजरत जी के यहाँ टेस्टिंग करवाने लगते थे। अल्लाह की पना, इन मच्छरों को भगाना काम नहीं है, मारना काम। उसके लिए बरेली का स्प्रे लाना, हीट हीट स्प्रे, फिर सबका मर्डर हो जाएगा। अब हमारा ये हमारी ये फौज तैयार हो गई है, इंशाअल्लाह हर एंगल पर ये तैयार रहेंगे। मस्जिदों में पहुंचेंगे, दरसगाहों में पहुंचेंगे, काल अल्लाह काल रसूल कहकर के और सुन्नियत का चिराग इनके दिलों में जलाएंगे। जो जल जाएगा नबी की मोहब्बत का चिराग, तो यहाँ माहौल को रोशन करेगा, वहाँ कब्र को रोशन करेगा। लहद में इश्क रुके शहर का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वमा अलैना इल्ला